તારીખ 29/3/1991 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા પાવાપુરીમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 5
सबने कठिनों के लिए नहीं चली है वहां तक एक पाव में परम पूज्य बेंसरी ने जाति स्मरण में क्या आया था उसमें हमें क्या समझना चाहिए। जाति स्मरण में अपने पूर्वों के कई प्रसंग आए थे, इसमें जो बातें प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है ही हमारे समाज में कि वो गुरुदेव के साथ यहाँ थे, अपने मित्र मंडल में सभी पुरुष पर्याय में थे, वो खुद नगर क्षेत्र के जीव थे, गुरुदेव एक राजा के राजकुमार थे, ऐसे कोई शांताबेन थी वो भी अपने पुरुष पर्याय में मित्र मंडल में थे, एक गुजर गए नारायण भाई करके पहले बहुत पहले गुजर गए वो भी वहाँ थे, ऐसे चार पांच मित्र की मंडली थी वहाँ, और वो भगवान सिमंदर के समोसरण में जाते थे सुनने को, आपस में चर्चाएं करते थे, ऐसे बहुत से बात प्रसिद्ध है। इसमें से हमें ये लेना चाहिए कि आत्मा शाश्वत है और जब भी वो अपने स्वरूप में जागृत होता है तो कार्य होता है। वहाँ तीर्थंकर देव के निमित्त थे, फिर भी वहाँ उस गुरुदेव को सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, और यहाँ तो आचार्य देव का समय साथ मिलते ही सम्यक दर्शन हो गया, निमित्त में इतना अंतर होते हुए भी जब प्रसाद करता है तो काम होता है, इसलिए हमें प्रसाद की प्रेरणा लेनी चाहिए। गुरुदेव श्री के भविष्य के बारे में कहा जाता है, वो बताते हैं कि हमें गुरु श्री की कैसी भावना मानी चाहिए। ठीक है कि महासमंदर भगवान के स्वरण में धीमे-धीमे ये बात चली थी कि गुरुदेव जो है वो भावी तीर्थंकर है, ये जो राजकुमार है वो भावी तीर्थंकर है, ये बात सुमंदर भगवान की धीरे को जुटाने से प्रसिद्ध हुई है, और वहीं से वो जाति स्मरण में आई थी, इसलिए उन्होंने यहाँ इसकी प्रसिद्धि की। आचार्य अमृतचंद जी ने एक जगह लिखा है कि 6 मास में हमें जैसे कहते हैं करक तो सम्यक दर्शन निश्चित होगा, दूसरी जगह लिखते हैं कि करोड़ उपाय करने में भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, काल लब्धि आने पर होगा, हम किस बात का स्वीकार करें। सम्यक रूप से हम दोनों बात का स्वीकार करें, दोनों बात ऊपर ऊपर से विरुद्ध दिखती है लेकिन बिल्कुल विरुद्ध नहीं है, अविरुद्ध है। कैसे कि जब जीव का पुरुषार्थ होता है काल लब्धि होती ही है, काल लब्धि होए पर उस काल में पुरुषार्थ नहीं हुए ऐसा कभी बनता नहीं, पांचों समाज के साथ ही रहते हैं, इसलिए ये तो काल लब्धि से कहो या पुरुषार्थ से कहो कहीं से भी कहो एक ही बात कहने की है। अब बात रही करोड़ उपाय करे तो भी नहीं होगा, ऐसी बात आती है वो कलश टीका में आती है, अमृतचंद्र आचार्य देव का चार नंबर का जो कलश है उसकी टीका करते हुए पंडित राजमल जी ने ये बात कही। तो इसका मतलब ये है कि अन्यथा करोड़ उपाय करे तो कर्तृत्व से करोड़ उपाय करे तो, लेकिन सहज आत्म पुरुषार्थ करने से काम नहीं बनता, ऐसे करने का बिल्कुल अभिप्राय नहीं
है। अंत सब उसमें हमको निकालना है, ऐसा है
कि पुरुषार्थ करने का उद्देश्य है। शास्त्र में जब पुरुषार्थ करने का उपदेश आता है तो ये किस शैली में आता है, तुम ये करो वो करो ये करो वो करो, आज्ञार्थ वचन होते हैं। ये आज्ञार्थ कहते हैं, इंपरेटिव सेंसेस को कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। तो हम कर्तृत्व में खड़े हैं, हमें ऐसा लगता है कि करु करु वाला जो भाव है ना उसमें जोर देना है, कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारा कर्तृत्व तीव्र हो जाए पुरुषार्थ के बहाने, तो दूसरा उसका जो पहलू है वो बता दिया कि भैया ये करु करु वाला पुरुषार्थ नहीं है। काल लब्धि होने पर सहज ही पुरुषार्थ उमड़ पड़ता है, ऐसा होता है, उसमें कर्तृत्व नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। तो इसलिए ये बात बताई महान बात बताई श्री गुरुदेव जी भाव में होने वाले अपने सिद्ध की, अपने शिष्य की सिद्ध पर्याय होगी। तब मेरा नमस्कार हो, वर्तमान में भी इतनी गुरु की निर्माणता का ख्याल सुंदर आया, हमें अति आनंद आया। जानना चाहते हैं दृष्टि चौथे गुरु स्थान में मुनिराज भाव नमस्कार करते हैं, वह नियमसार कलश की टीका में है, उसका विस्तार समझा दें। एक कृपा करें, सम्यक दृष्टि का निर्मल मुनिराज को हृदय में कितना है, किस तरह एक अनंत अनंतानुमंदीन चौपड़ी कसाय का अभाव वाला और दूसरा तीन चौपड़ी कसाय के अभाव वाला है, फिर भी नमस्कार है। वह द्रव्य भाव किस तरह नमस्कार है, द्रव्य भाव नमस्कार है। मुनिराज द्रव्य नमस्कार नहीं करते, सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि का भाव द्रव्य दोनों नमस्कार करते हैं, लेकिन ऊपर के गुण स्थान वाले भाव नमस्कार करते हैं, द्रव्य नमस्कार नहीं करते। जैसे कि गांधर देव पंच परमेष्ठी का में जो नमस्कार मंत्र है उसका उच्चारण करते हैं, तो गांधर देव तो आचार्य है, प्रमुख आचार्य है, तीन पद है आचार्य उपाध्याय साधु, तीनों नर दिगंबर संत के पदवी है, तीनों एक ही गुणस्थान में छठवें सातवें में, लेकिन तीन पदवी है इसमें आचार्य की उपाध्याय की और साधु की। तो उसमें गुरु शिष्य पड़ा होता है, गुणस्थान एक ही होने पर एक साधु शिष्य होता है, आचार्य उनका गुरु होता है। तो भाव नमस्कार तो पहुंचते हैं, नमो लोहे सर्व सामणम, इसमें आचार्य भी भाव नमस्कार तो करते हैं, लेकिन शिष्य आता है तो उठ करके नमस्कार करने को, द्रव्य नमस्कार करने को आचार्य नहीं जाते। लेकिन शिष्य बैठा हो और आचार्य पधारते हैं तो उठकर वो द्रव्य नमस्कार कर लेते हैं। तो ऐसे ऊपर की पदवी वाले को द्रव्य नमस्कार करने का नहीं होता, भाव नमस्कार करने का व्यवहार होता है। ऐसे आचार्यों ने जैसे कि नियमसार के वो बताया और दंशन मूलों के मुख में उन्होंने कहीं ऐसे आधार दिए वंदामहे तं वयम् ऐसा शब्द पड़ा है नियमसार में।
जिसको लिखना है लिख लेंगे और जिसके ऐसे आधार चाहिए ये अपने विचार विभाग में टेबल पर ये है पीला कलर में ये टाइटल है वहाँ उसमें बहुत से आधार दिए हैं आचार्यों के और मुनियों के जिन्होंने सम्यक दृष्टि को वंदन करने के लिए ये बात प्रसिद्ध की है। इसलिए हमें पैसा अपराध के परिणाम नहीं होने चाहिए, सम्यक दृष्टि को वंदन नहीं करना चाहिए, ऐसे परिणाम हमारे मुमुक्षु भक्तों को होने नहीं चाहिए। जब मुनिराज होकर के ऐसे लिखते हैं तो ये तो श्री गुरु की आज्ञा होगी, उस पर पैर रखने का हमारा या किसी का अधिकार नहीं है। इसलिए ये बात साफ हो जाती है, सम्यक दृष्टि वंदनीय है और पूजनीय भी है। श्री समयसार गाथा 155 में जीवादि पदार्थों का सद्धांत सम्यक दर्शन है तथा मोक्ष पावन गाथा 38 में तत्वरुचि सम्यक दर्शन है कहा है, किंतु मोक्ष पावन गाथा 37 में जो देखता है वह सम्यक दर्शन है कहा है। तत्व समझ में आता है, तत्व रुचि वह जो देखता है स्पष्ट, इसमें क्या अंतर है स्पष्टीकरण करें। अच्छा वो तो क्या है कि एक ही बात अनेक तरह से कही जाती है, तत्वरुचि सम्यक दर्शन है ये ज्ञान श्रद्धा प्रधान है और नव तत्व का श्रद्धांजलि सम्यक दर्शन है, जो नव तत्व ज्ञान में नव भेद होते हैं दर्शन है या स्वरूप का अभेद श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है, श्रद्धा की श्रद्धा प्रधान बात हुई। नव तत्व सम्यक दर्शन है ये श्रद्धा की ज्ञान प्रधान बात हुई। स्वरूप में उपयोग जम जाए या स्वरूप की उपाधि का रूप आचरण ही सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन के चारित्र प्रधान कथन हुआ। और उसी काल में कोई अपूर्व पुरुषार्थ चलता है उसे भी हम सम्यक दर्शन कह सकते हैं, ये पुरुषार्थ प्रधान सम्यक दर्शन की बात हुई। पर उस काल में अपूर्व आनंद आता है ये आनंद प्रधान सम्यक दर्शन की बात है। तो अनेक गुण से हम एक ही गुण की बात कह सकते हैं अभी ना भावी परिणाम होने के कारण।
पर्याय का कथन गुण प्रधान और द्रव्य प्रधान हो सकता है, गुण का कथन द्रव्य प्रधान और पर्याय प्रधान हो सकता है। यह आर्टिकल हमने लिखा है तत्वानुशीलन में, विवीक्षा 36 प्रकार के विवीक्षाओं के भेद होते हैं। तो कहीं भी कैसा भी कथन हो, ये विवीक्षा अगर हमारी समझ में साफ है तो जो भी कथन आएगा हमारी समझ में आ जाएगा कि ये ज्ञान प्रधान प्रधान का कथन है या ज्ञान प्रधान ज्ञान का है या ज्ञान प्रधान आचरण का है। कोई शंका फिर रहने का सवाल नहीं होता। अभी गुजराती में है लेकिन जिसको गुजराती पढ़ना आवे तो वो लेना हमारे पास है। तो ऐसे कथन की पद्धति में कोई दोष नहीं है।
कौन सी
तत्वानुशील आत्मा में अनंत गुण है और एक एक गुण में अनंत अनंत शक्ति का रूप है, इसका खिलाफ खुलासा कीजिए। हाँ, ये बात भी प्रसिद्ध हुई है दीपचंदे साहब के चिन्हविलास में से। चिन्हविलास में एक प्रकरण लिखा है, एक गुण में एक गुण को अनंत गुण का गुण हो रहा है। ये बात उन्होंने अन्य प्रकरण से भी लिखी है उसी ग्रंथ में, और उनका एक और ग्रंथ है परमात्मा, इसमें भी वो बात बार बार आती है। स्पष्टीकरण यह है कि जैसे ज्ञान में अस्तित्व का रूप कैसे है, कि ज्ञान है कि नहीं है, कि है तो है अपना ये अस्तित्व का लक्षण है, और ज्ञान है तो ज्ञान को अस्तित्व का रूप मिलता है। जैसे ज्ञान सुख रूप है, निराकुल होने से जैसे सुख निराकुल का सुख का लक्षण है और ज्ञान भी निराकुल है, इसलिए ज्ञान को सुख का रूप मिलता है। इसलिए एक ज्ञान लक्षण से अनंत, एक ज्ञान लक्षण में अनंत गुण का रूप होने से अनंत गुण स्वाभाविक जो दृढ़ स्वभाव है उसके पहचान हो जाती है। इसका एक कारण है कि दूसरे दूसरे गुण का क्या, ज्ञान में तो ज्ञान है, अपने ज्ञान सुख रूप है इसलिए सुख का पता चला, और ज्ञान में स्वच्छत शक्ति का रूप है इसलिए तो प्रतिबिंब आता है, स्वच्छत शक्ति का रूप है। स्वच्छत शक्ति है ना, 47 शक्ति में स्वच्छत शक्ति है, इसका रूप ज्ञान को मिला। ज्ञान में निर्मलता जो कहते हैं वो स्वच्छत शक्ति का रूप है। वैसे अनंत गुणों का रूप एक गुण को होता है, ये वस्तु का स्वरूप है। और ये बात बहुत से ग्रंथों में निकलती है।
अभी पंद्रह भाई बैठे आज के द्रव को देखा, द्रव में उपाय समझ में नहीं आ रही है।
ऐसा लगता है कि जैसे मुझे द्रव्य का ज्ञान हुआ है। अरे हाँ, पर्याय में अंपना नहीं छोड़ता, बैठना मैंने क्या कि वहां आसन लगा दिया, मैं पर्याय मात्र हूं। ऐसा तो पर्याय में एकत्व बुद्धि ही बैठ गया है, और एकत्व बुद्धि तो पर्याय में रखे, और द्रव्य ऐसा है, द्रव्य ऐसा है, त्रिकाली है, ध्रुव है, लेकिन वो तो अहम भाव नहीं हुए वहां तक, तो वो द्रव्य में बैठने का होगा।
निर्णय तो पर्याय में हुआ ना,
निर्णय पर्याय में, निर्णय पर्याय में द्रव का हुआ तो स्वयं के रूप में होना चाहिए था।
तो पर्याय में बैठकर पर्याय में से तो दिख जाएगा,
पर्याय में देखने वाली पर्याय होगी, लेकिन अहम भाव त्रिकाली में होगा। भाव होगा पर्याय में, लेकिन त्रिकाली में अहम पड़ा ऐसा ऐसा भाव होगा।
भाव करेगी पर्याय। क्या भाव करेगी? कि पर्याय सो मैं नहीं, मैं तो त्रिकाली हूं, ऐसा ऐसा भाव करेगी।
वो पर्याय ध्रुव हुई,
पर्याय ध्रुव नहीं हुई, ऐसा भाव हुआ पर्याय में। ध्रुवाकार स्वरूपाकार ऐसा भाव हुआ, उसको कहते हैं कि द्रव्य में बैठा, लेकिन ऐसा अनुभव हुए नहीं। ऐसा अनुभव नहीं होने पर भी अनादि से पर्याय में एकत्व करते रहे और ध्रुव का विकल्प करते रहे, तो ये पर्याय में बैठ के द्रव्य को देखता है, सो सम्यक नहीं है, असम्यक है। तो पर्याय सन्मुख हो जावे, फिर अपनत्व भाषित होवे द्रव्य में, तब द्रव्य में बैठा ऐसा कहा जावे, ऐसी बात है।
पर्याय ने द्रव्य पर स्थापित करना चाहिए,
हाँ, मैं द्रव्य पणे हूं, ऐसे ऐसा भाव स्थापना का पर्याय में आता है और स्थापना होती है द्रव्य में।
द्रव्य में बैठ के द्रव्य पणे को देखने का मतलब ये हो गया,
हाँ, कि द्रव्य में अपनी स्थापना हो गए, सन्मुख होकर के जब तो द्रव्य में बैठा ऐसा कहा जावे। श्री को जाति स्मरण हुआ, वे स्वयं का तो होना उचित है, किंतु स्वामी जी सक्रता बहन थी कि किन्हीं आत्मा को जाना देखा नहीं हो, तो स्वामी जी का जाति स्मरण समझे समझ में नहीं आता।
बहन जी को जाति स्मरण था तो अपने बारे में तो जाति स्मरण में आ सकती है, लेकिन स्वामी जी के बारे में वो उनकी आत्मा को तो घंटी देख नहीं सकती, तो स्वामी जी के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा वो समझ में नहीं आता है, वो जाति स्मरण का विषय नहीं है, ऐसा इनका कहना
नहीं, ऐसा नहीं होता। जाति स्मरण में अपने सिवा दूसरे दूसरे कौन कौन थे, मकान कैसा था, माँ बाप कैसे थे, मित्र कैसे थे, ये सब याद आता है। तो ये बात जरूर है कि यहाँ तो ये देह भी पलट गई, आत्मा वो का वो है, आत्मा तो देखने में नहीं आता, लेकिन ये मति ज्ञान में इतनी विशेषता निर्मलता के हिसाब से आती है, तो पता चल जाता है कि ये वही जीव है जो वहाँ ऐसा था, ये वही जीव है जो वहाँ ऐसा था, ऐसा समझ में आ सकता है। तो मति ज्ञान में
आधा दृष्टिकोण निर्मलता
नहीं, मिथ्या दृष्टिकोण नहीं, पेंसिल से तो स्वरूप ध्यान में ये जाति स्मरण खुला है, स्वरूप ध्यान में खुला है, इसलिए उनको बहुत सी विशेषताएं थी। इसमें ये भी एक प्रकार की विशेषता है, समझो
जाति स्मरण में मिथ्या दृष्टि की जाति स्मरण में और नई दृष्टि की जाति स्मरण में
फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। इसका कारण निर्मलता है, इसका कारण निर्मलता नहीं है, कोई पूर्व में मंद कषाय हुआ है वो है, जिसको क्षयोक्षम कहते हैं उसी प्रकार का। जैसे लब्धियाँ, तो लब्धियाँ भावलिंगी मुनिराज को भी पैदा होती है, मिलती है, और कहीं मेले विद्या वालों को भी तपश्चर्या करके मंद कषाय से लब्धियाँ होती हैं। जैसे ग्यारह लोक पर्व का ज्ञान होता है मिथ्या दृष्टि को, और सम्यक दृष्टि को भी कम हो या ज्यादा हो, लेकिन निर्मलता के हिसाब से तो दोनों क्षोक्षम है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। मते स्वरूप तो दोनों कहलाता है, बड़ा अंतर है इसमें।
जाति स्मरण तो पूर्व भव का मतलब उत्थान आ सकता है, तो आगामी भव का स्वामी जी के बारे में कैसे बता दिया?
हाँ, तो वो तो बात सुनी थी उन्होंने, ये बात पूर्व भव में जो सुनी थी वो स्मरण में आई है कि ये जीव है, वो तीर्थंकर का जीव है, ये गंधर्व का जीव है, ऐसा जो जाति स्मरण में आया था वो कहा है, तो ये सुनी हुई बात याद आएगी। भविष्य का विषय जाति स्मरण में नहीं हो सकता, लेकिन भूतकाल में जो भविष्य के लिए सुना था वही प्रकाशित कर दिया।
मतलब भूतकाल में किसी के बारे में कुछ सुनी हुई बात या देखी हुई बात,
हाँ,
वर्तमान में याद आना,
याद आ सकती है। जैसे हम कल किससे क्या बात करी थी, या हम चार साल पहले इधर आए तो क्या बात चली थी, स्मरण में आते तो बोल सकते हैं, वैसे बात है। बातों का स्मरण हो सकता है, रह सकता है, सामान्य ज्ञान प्रकट ज्ञान के पर्याय का एक पहलू अनित्य। सामान्य ज्ञान अभेद द्रव्य सामान्य त्रिकाली अखंड अनुभय द्रव्य सामान्य त्रिकाली नित्य उपरोक्त तीनों में से दृष्टि का विषय अहम बुद्धि करने योग्य शुद्ध द्रव्यार्थिकने का विषय पंचाध्यायी में किसे कहा है कृपया खुलासा कीजिए। जो पंचाध्यायी में जो शुद्ध द्रव्यार्थिकने का विषय कहा है वो त्रिकाली सामान्य नित्य जो द्रव्य स्वभाव है उसको कहा है। सामान्य जो सामान्य ज्ञान जो है उसको नहीं कहा है। सामान्य ज्ञान अभेद द्रव्य सामान्य त्रिकाली अखंड अनुभव ये सामान्य ज्ञान नहीं, ये सामान्य स्वभाव है। अभेद द्रव्य सामान्य त्रिकाली अखंड अनुभव ये स्वभाव है, उस द्रव्य स्वभाव और द्रव्य सामान्य त्रिकाली नित्य वो सभी विशेषण दोनों किस्मों में सभी विशेषण लागू हो सकता है।
दो नंबर में जो अनुभव वो दृष्टि का विषय
है, वो दृष्टि का विषय है,
बाकी दोनों दृष्टि के विषय नहीं,
दोनों दृष्टि के विषय नहीं है। वो द्रव्य सामान्य त्रिकाली नित्य है वो निश्चय का विषय है, निश्चय का विषय है, लेकिन उसमें क्या है कि पर्याय रहित देखने में वो आता है, पर्याय रहित देखने में आता है। तो ये द्रव्यार्थिकने का विषय होता है और सामान्य ज्ञान प्रगट पर्यायार्थिकने का विषय है। ऐसे द्रव्यार्थिक का विषय में पर्याय जो नित्य का भेद ले रहे तो इन्हय का विषय हो जाता है, अनुभव लेवे तो दृष्टि का विषय हो जाता है, और अनित्य है वो पर्याय नहीं का विषय होता है। ऐसा तो इसमें क्या भेद हुआ कि ऐसा द्रव्य सामान्य त्रिकाली नित्य है उसको कभी द्रव्यार्थिक ने का विषय भी कहा जाता है और कभी खंड भेद के हिसाब से उसको ऐसा द्रव्यार्थिक ने का प्रमाण का विषय पर्याय साथ में लेकर के कहा जाता है। और ऐसे दो भेद पाते हैं पर्यायार्थिक ने और द्रव्यार्थिक ने, नाई का विषय द्रव्यार्थिक ने का विषय पर्यायार्थिक ने प्रमाण का विषय और दृष्टि का विषय, ऐसे चार भेद हो जाते हैं। कभी कभी द्रव्यार्थिक ने का विषय को दृष्टि के विषय में भी लेते हैं भेद नहीं लेकर के, और भेद लेते हैं तो ये नए का विषय हो जाता है, भेद पड़ता है, क्योंकि नए है वो अंशग्राही है, दृष्टि में अंश अंश का भेद नहीं है इसलिए अनुभव कहा, और द्रव्यार्थिक ने अंश को ग्रहण करता है इसलिए एक अंश का भेद करके उसको द्रव्यार्थिक ने कहा। इतना अंतर है पंचाध्यायी वाले तो गए अजीत भाई के लिए। उपयोग धारणा परिणति लब्ध पर्याय में कैसे और किस तरह उपयोग को हम समझ सकते हैं, जो हमारे ज्ञान का व्यापार है उसको उपयोग कहते हैं। धारणा जो मति ज्ञान में स्मृति रहती है तो उसको धारणा कहते हैं। परिणति जो उपयोग वाला ज्ञान जो प्राप्त ज्ञान जिसको कहते हैं, परिणति मैंने क्या है कि जो जिसमें दूसरे दूसरे भी गुण हैं उसमें लब्ध भी आता है और दूसरे गुण भी आता है। लब्ध और परिणति में क्या अंतर है, कि ज्ञान के जो परिणति है उसको लब्ध कहते हैं, और ऐसे परिणति में बहुत से गुणों के परिणमन भी है उसको भी परिणति कहते हैं। जैसे चारित्र गुण की भी परिणति होती है, श्रद्धा गुण की भी परिणति होती है, सुख गुण की भी परिणति होती है। जैसे ज्ञानी को परिणति में अनंत गुण है, तो उसकी जो शुद्ध अवस्था है वो परिणति, उसकी जो शुद्ध अवस्था है उसमें परिणति ही शुद्ध है, बाकी के जो मनुष्य है वो अशुद्ध है, ऐसा होता है। और ज्ञान में जो लब्ध है वो प्रकाश करता है। और उसी चारित्र गुण का एक अंश जो है वो परिणति के लब्ध के साथ रहता है। तो जैसे चारित्र गुण में दो भेद हो गए तो विवाद हो गया, ऐसे सुख और दुख तो उपयोग पा लेगा आकुलता हुई, उसी सुख गुण की एक अंश जो है वो शुद्ध है सुख रूप में और परिणति में है। ऐसे परिणति में शुद्ध परिणति में अनंत गुण है ज्ञानी को, दृष्टांत रूप से समझे तो। पर उपयोग के साथ जितने भी गुण के अंश बाहर जाते हो ये सब अशुद्ध होते हैं, सुख में दुख होता है, चारित्र में राग होता है, ऐसे श्रद्धा में तो भाग होता ही नहीं, श्रद्धा तो पूरी की पूरी जो चलती है ऐसी चलती है, उसमें दो भेद होता ही नहीं। पर्याय भी एक व्यापक शब्द है, ऐसे परिणति भी व्यापक शब्द है कि किसी भी हालत को पर्याय कह सकते हैं, कि कभी किसी भेद को भी पर्याय कर कह सकते हैं। जैसे कारण स्वरूप पर्याय द्रव्य का भेद है वर्तमान त्रिकालिका, तो उसको भी पर्याय कह सकते हैं। और परिणति कभी सारे परिणाम को भी परिणति कहते हैं, कि जीव का ऐसी परिणति है, इसी परिणति मतलब इसके ऐसे परिणाम ही ऐसे होते जाते रहते हैं। तो परिणति एक अंश को भी कहते हैं और पूरे परिणाम को भी कभी परिणति कहने में आते हैं। तो जो शब्दार्थ है वो तो कभी कभी अन्य अन्य अर्थ में भी प्रयोग होते हैं। तो जहाँ जो भी प्रकरण चला हो, जहाँ जो कहने के अभिप्राय हो, उसी अनुसार उसका अर्थ कथन करना चाहिए।
लब्ध और उपयोग ये सिर्फ ज्ञान को ही लागू पड़ता है,
सिर्फ ज्ञान को ही लागू पड़ता है,
परंतु अनंत गुण को लागू पड़ती है,
परंतु में तो अनंत गुण होते हैं।
पर्याय करने से समग्र
समग्र पर्याय पर्याय में तो बहुत से व्यंजन पर्याय को भी पर्याय के हैं, नाम सुख पर्याय को भी पर्याय के हैं, अर्थ पर्याय को भी पर्याय के हैं, ऐसे परिणति को भी पर्याय के हैं, पर्याय को परिणति भी कहे, ऐसे कह सकते हैं।
उपयोग से भेद कैसे रहे,
लोक समारक में ऐसा हो जाता है, जो परिणाम है ज्ञान गुण में से ज्ञान का पर्याय उठा, ज्ञान गुण में से ज्ञान का पर्याय उठते ही इसमें लब्ध और उपयोग ऐसा दो विभाग हमेशा छद्मस्थ अवस्था में सबक हो रहता है, सबक हो रहता है, ज्ञानियों को भी रहता है अज्ञानियों को भी रहता है। जैसे आप भी हमारे साथ धार्मिक चर्चा करते हैं, फिर भी आप जो भी व्यवसाय करते हैं इसका लब्ध ज्ञान अभी भी आपको है, उसका नाश नहीं हुआ है, उस ज्ञान है आपके पास अभी भी मौजूद है, विद्यमान है। तो ऐसा जो है वो लब्ध में रहता है, जो भी ज्ञान आपने पढ़ा हो व्यवसाय का हो, जो भी आप गणित संबंधी पढ़े हो, दूसरे दूसरे विषय के बाद जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया हो वो सभी लब्ध में रहता है। ऐसा जैसे एक दुकानदार बहुत से आइटमों का धंधा करता है, तो कोई ग्राहक आता है तो बोलता है कि हमें ये चीज चाहिए, क्या भाव है, तो वो बताता है कि ये आपने जो चीज मांगी उसका वो भाव है।
परंतु उसको उसी वक्त जितने भी आइटम है सबका मालूम है। उपयोग किसका होगा कि जिसका व्यापार होगा इसका उपयोग होगा। जो मांगेगा सामने वाला तो हमको ये चाहिए तो कहाँ इसका ये भाव है, फिर बोलेगे वो चाहिए तो कहाँ इसका वो भाव है। तो इसका भाव बताया इस वक्त उसका भाव उसके लब्ध में है ज्ञान में। सभी चीजों का ज्ञान में लब्ध है और जब भी जिस चीज का जरूरत पड़ता है उपयोग उसका हो जाता है। ऐसा
तो लब्ध को अगर धारणा कहें तो क्या अंतर?
कभी कहते हैं लेकिन धारणा में क्या है कि धारणा स्मृति से भी संबंध रखती है और उसमें स्मृति 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 का संबंध है।
तो
जैसे कोई कहे कोई हमको ये चीज चाहिए तो अगर उसकी स्मृति विस्मृति का विषय से देखे तो वो भूल जाता है।
ऐसा
अंतर हो गया।
मैंने
धारणा मत ज्ञान से संबंध रखती है और लब्ध श्रुत ज्ञान से संबंध रखता है। ऐसे मत श्रुत का फिर पड़ता है इसमें
ज्ञान से जाता है।
जी
जी जाता है धारणा में धारणा वाला ज्ञान जाता है।
किसके साथ जीव के साथ जाता है? एक भाव में से बीज दूसरे भाव में जाता है। भावांतर में तो भावांतर में क्या है कि संस्कार हो जाता है। धारणा में क्या एक भाव से जब भावांतर हो जाता है किसी जीव का तो जो संस्कार है वो जाता है, बाकी सब जो है वो नहीं रहता। इधर खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सिर्फ इतने संस्कार है वो ही जाते हैं। जैसे वो चींटियां होती है, लाल भी होती है काली भी, तो काली है वो काटती है पर लाल है वो काटती है, दोनों चींटी है। तो एक में क्रोध के संस्कार है, पूर्व में क्रोधिक अवस्था में उनका जो है जाति चींटी होने पर भी अलग हो गया है। तो चलते चलते ऐसे शरीर पर चलेगी कहीं भी काट लेगी। क्यों काटती है? तो उसको क्रोध आता है। एक को क्रोध आता है दूसरे को नहीं आता है, क्या कारण है? तो पूर्व संस्कार का ही कारण।
मनुष्य की पर्याय में चींटी का जो आगामी भाव में जाकर जो चींटी बना वो जीव ने क्रोध की के जो संस्कार है और ज्ञान उसका कमती हो गया,
ज्ञान चला गया, ज्ञान चला गया। जैसे हम आए किसी भाव में से कहीं से तो आए, हमें कुछ पता नहीं कहाँ से आया है, कोई पता नहीं रहता है कि हम कहाँ से आए थे, कहाँ थे, कैसे थे, कुछ पता नहीं है। तो ज्ञान वहाँ खत्म हो गया सब। लेकिन कुछ संस्कार रहते हैं, जैसे आर संगना है तो बच्चा होता ही वो दूध पीने लगता है, तो पूर्व संस्कार है ऐसे। संस्कार में एक से अधिक गुणों की पर्याय परिणाम शक्ति को हम संस्कार कहते हैं। पर जिस पर्याय को वो संस्कार परिणमेगा उसकी जो योग्यता है शक्ति रूप योग्यता है उसको हम संस्कार कहते हैं, उसको पर्याय परिणाम शक्ति कहते हैं। पशुओं आदि में सम्यक दर्शन गुणा कहा गया है उनको हो, उनको तो यह लय आदि का ज्ञान नहीं है, तो किस तरह का और किस प्रमाण का सम्यक दर्शन होता है? तो क्या होता है कि वो ऐसे स्थूल विकल्प नहीं होते, लेकिन ज्ञान नहीं होता पशु को ऐसा नहीं है। जैसे हम वो सर्कस में देख सकते हैं कि पशु कितना काम करता है, तो मास्टर थोड़ा सा इशारा करता है चाबुक से तो घोड़ा है दो पग से ऊंचा करके चलने लगता है, दो पग चार पग वाला था दो पग से चलने लगता है, दौड़ने लगता है, इशारा करने से दौड़ते दौड़ते खड़ा रह जाता है, वो घुमाता है तो एक चाबुक ऐसा करता है दौड़ने लगता है, दूसरा करता है खड़ा रह जाता है। तो मतलब उनमें समझ सकती है वो व्यक्त नहीं कर सकते, जो संगनी है तेरी उसमें अपने प्रयोजन सुख और दुख ये दोनों विषय को समझने की शक्ति होती है, तो इसलिए उसको भी भेद ज्ञान होता है। ये राग है वो आकुलता में ही है, ज्ञान है वो सुखरूप है, राग से खिसकना ज्ञान में आना ऐसा उनको भी होता है, इस तरह उनको सम्यक दर्शन होता है, लेकिन वो अपने परिणाम को बता नहीं सकते, भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते, हरबल होता है, भाव भाषण नहीं होता तो सर्कस में काम कैसे करते, मनुष्य से भी ज्यादा कर लेते हैं कितने प्राणी को, तो अच्छी तरह उनको मन है ना, मन से ज्ञान स्पष्ट होता है विशद होता है, ऐसा हमको बन सकता है।
पूर्व संस्कार वहां पर काम करते हैं
कहा त्रिंज को जो है सम्यक दर्शन होता है उसमें पूर्व संस्कार से होता है, क्योंकि ज्ञानी का उपदेश सुनना ऐसा मौका उनको नहीं है, फिर भी कोई असाधारण प्रसंग में ऐसा भी होता है, जैसे भगवान महावीर स्वामी को हुआ तो अगले दसवें भाव में सिंह की पर्याय में उसको उपदेश सुनने का मिला था, वो संस्कार लेके नहीं आए थे। आप यदि पुराण पढ़े तो महावीर स्वामी के जीव का इतिहास हमें मिलते हैं, ऋषभ देव स्वामी से मिलता है, जीव तो अनादि का है, जब पुराण में जो उल्लेख है वह ऐसा है कि वो पौत्र थे सुखदेव भगवान के, वो पुत्र थे मरीचि कुमार, और जैन काफी विरोध किया है, तीर्थंकर देव का विरोध बहुत किया है, बहुत पौरवाद किया है, तो उसके फल में वो नरक में गए। फिर यहाँ से ये एक कोड़ा कोड़ी सागर है ना चतुर्थ काल का, तो ये प्रारंभ था चतुर्थ काल का, और चतुर्थ काल के अंत में वो अंतिम तीर्थंकर हुए हैं, तो सारा जो चतुर्थ काल उन्होंने पास किया, इसमें वो नरक में से निकल करके बहुत हिंसक प्राणी हुए हैं बहुधा, फिर नरक में गए हैं, फिर वो हिंसक प्राणी हुए हैं, फिर नरक में गए हैं, ऐसा होकर के कभी मनुष्य जो हुए तो फिर जैन धर्म का विरोध ही किया है उन्होंने, बहुत बार किया है, फिर नरक में गए हैं, ऐसे वो नरक में से तो आए हैं सिंह के भाव में, फिर उस वक्त उनकी जो काल लगती है फकी है, तो ये संयोग हुआ है कि ऊपर से जो चारों रुद्रधारी मुनि चले जा रहे थे उनका नजर नीचे गया है तो सिंह को देखा, तो उनको तो उस प्रकार के अवधि ज्ञान या कोई तो विशिष्ट प्रकार के ज्ञान लब्धियां थी, तो चारण रुद्रधारी मुनि लब्धिधारी तो होते ही, तो उनको पता चला है करे ये सिंह तो भावी तीर्थन करें, महावीर स्वामी का जीव है आज से दस भाव के बाद, तो नीचे आते हैं, नीचे आते हैं तो उस वक्त उनको तो भूख लगी है, तो वो तो एक भारण को मारते हैं, उसी टाइम में वो नीचे आते हैं तो वो चौंक गए, अरे मनुष्य तो मुझे देखने देख करके भगने लगते हैं, तो ये मेरे सामने आ रहे हैं, बात क्या है, हाथ में कुछ हथियार तो नहीं शिकार करने को आ रहे, बिल्कुल ऐसे खाली हाथ वाले हैं, कुछ हाथ में नहीं है, तो उनको कुतूहल में ही कसाई बंद हो गया, तो फिर वो संबोधन किया उनकी भाषा में, लब्धिधारी थे तो वहां उपदेश का मेल बैठा, वरना तो तिरियंश उपदेश के पात्र नहीं होते, सीधे, फिर भी जो समोसरण में जाते हैं उनको भगवान की वाणी ओंकार ध्वनि है वो अपनी अपनी भाषा में उसको समझ में आती है। जितने किस्म के जितने भी जाति के हो हर एक त्रिवेंद्र की भाषा अलग अलग है। बकरी बैंग करती है तो जो कबूतर है कुहू करते हैं, कुकड़ा दूसरी तरह बोलता है, ऐसे हर एक की भाषा भी अलग अलग है फिर भी वो सबने अपने अपने भाषा में समझ पड़ती है। प्रभाव कईयों को सम्यक दर्शन होता है, पंचम गुण स्थान तक भी आगे बढ़ते हैं, कईयों को संस्कार मिलता है तो संस्कार से भी आगे काम हो जाता है। ऐसे त्रिंद्र में भी अवकाश है धर्म प्राप्ति का, संगनी पंचेंद्री को में तो 2000 सागर के अंत में यदि तत्व का संस्कार होता है तो वो पूर्व संस्कार कहाँ तक कार्यकारी है। पूर्व संस्कार तो जाता ही नहीं है, जो आत्मा आत्म स्वभाव के जो संस्कार पड़ते हैं ये तो संगीय अवस्था में पड़ते हैं, पर उसी जीव को फिर निगुण में जाने का अवकाश कम है। फिर भी ऐसा नहीं है कि वो जावे ही नहीं, जैसे अभी निगुण में सादी मिथ्या दृष्टि अनंत है तो उसमें संस्कार तो है ही, लेकिन जब उन निगुण से निकले तब समय दर्शन की प्राप्ति होगी संगी पंचेंद्रीय अवस्था में, ये हो सकता है। लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि को संस्कार पड़ता है तो ये दूसरे या तीसरे गुणों में करीब करीब समय दर्शन को पाता है, उनकी अनुगति इतनी नहीं है। दिगंबरा अभिनय में आरती करना दीपक कपूर से, दीपक से कपूर से अथवा लाइट से उचित है, यानी लाइट से हो गए छोटी सी तो अच्छा है। वो दीपक और कपूर में तो क्या है कि रुचि हिंसा का जो सहज रहता है, तो इसलिए हमारे यहाँ तो ये दीपक और कपूर का प्रयोग आजकल नहीं है। हम यहाँ छोटे छोटे जो बल्ब हैं वो आरती में रखते हैं, तो इससे दूसरे जीवों की हिंसा होने का कम अवसर रहता है।